उपवास न करता हो तो उसे बिल्कुल माने स्त्री को उपवास नहीं करना चाहिए। ये बात क्यों लिख दी सेठ जी ने? बात लिखी है, अब पति नहीं करे तो नहीं करे, हमें हमको क्यों रोके? एकादशी की ये महिमा है, एकादशी की वो महिमा है, वो नहीं करते तो सब ना हम भी नहीं करें, ये माताओं बहनों के मन में प्रश्न होता है। पर मूल महापुरुषों के ऐसे ऐसे जो वचन है उनका मूल भाव क्या है? मूल भाव यह है कि पति आज्ञा एकादशी आदि उपवासों से भी श्रेष्ठ है, इसको आज कीमत कम दे रहे हैं, उपवास व्रत आदि को देते और अपना स्वभाव नहीं सुधारते, अपने बोली से अपने व्यवहार से पति को प्रसन्न नहीं करती, उनके लिए पाते हैं कि पति यदि आज्ञा दे दे तो फिर कोई हर्जा नहीं। वो पति की आज्ञा हो गई ना तो उपवास न करने के बाद जब उपवास, पति की आज्ञा मुख्य है। मूल में बात यह है, स्त्रियों को इतना स्वतंत्र भी नहीं होना चाहिए और पुरुषों को इतना उनको परतंत्र भी नहीं समझना चाहिए, दोनों तरफ का बैलेंस बनाओ। अब पति है वो खान पान का ध्यान नहीं रखते, न खाने योग्य चीज खाते हैं और न पीने योग्य चीज पीते हैं, और पत्नी को कहते हैं तुम एकादशी व्रत करो मत करो, तो ये समझ में नहीं आती बात। सत्संग में मत जाओ, पति की आज्ञा है। आज्ञा वो देनी चाहिए जिस आज्ञा से अपना और दूसरे का दोनों का अभिमान और स्वार्थ तो नष्ट हो और परमार्थ की तरफ विकास हो, ऐसी आज्ञा देनी चाहिए। गुरु की आज्ञा का बहुत महत्व है, उपनिषदों में क्या सब जगह क्या, पर गुरु ने कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं दी। माता पिता की आज्ञा की बड़ी मर्यादा है, माँ बाप की आज्ञा, माँ ने जो कह दिया सो कह दिया, युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध कर लिया नहीं, युद्ध करते क्या युधिष्ठिर जी? कतई नहीं करते। एक माँ ने कह दिया कि बेटा युद्ध करो, बस माँ तुम्हारी आज्ञा है। माँ ने कह दिया कि जो तुम्हारी भिक्षा माया पांचों बांट के खाओ, तो द्रौपदी के साथ पांच जनों ने विवाह किया। लेकिन माँ की भावना क्या है? माँ की भावना बहुत ऊंची है, कुंती माता की। विवाह किया लेकिन उसका कन्यात्व भंग नहीं हुआ द्रौपदी का, अर्जुन के साथ पहले विवाह हुआ, अर्जुन ने जीता था अपने बल पौरुष से। विवाह फेरा करते ही स्त्री का कन्यात्व उतर जाता है, फेरा लेते ही, क्योंकि स्वीकृति होगी ना, ये मेरा पति है, स्वीकृति में ही तो ये पति भाव आ गया। पहले कन्या भाव था, पति भाव आ गया, मैं कन्या हूं अर्थात अविवाहिता हूं, और विवाहित होते मैं विवाहिता हूं, बस कन्यात्व तो उतर गया। अब आप कन्या नहीं मानती अब वो, लेकिन द्रौपदी का कन्यात्व तो नहीं उतरा। ब्याज से वो द्रुपद ने कहा कि मैं ऐसे कैसे विवाह करूं, मैं तो कन्यादान कर सकता हूं, इसलिए एक के साथ विवाह करते ही तो फिर इसका जो है कन्यात्व तो हट गया, फिर मैं कन्यादान कैसे करूंगा? वेद व्यास इनका हम कहते हैं क्यों? क्योंकि इन लोगों ने द्रौपदी के सुंदरता को लेकर या द्रौपदी के और किसी बात को लेकर के नहीं गया, मां की आज्ञा से स्वीकारी है, मां की आज्ञा। कुंती ने कहा बेटा मैं क्या करूं युधिष्ठिर, मैंने कह तो दिया, मुझे ये पता नहीं था, मैंने देखा कोई रोटी वगैरह रोज लाते हो, वैसे लाए होंगे भिक्षा से कोई वस्तु लाए होंगे, मुझे क्या पता कि कोई ऐसी द्रौपदी नाम की लड़की तुम लेकर आए हो, कन्या को लेकर आए हो, मुझे पता नहीं था बेटा, मेरी नियत देख लो। युधिष्ठिर ने कहा मैया आप कभी झूठ बोल नहीं सकते, ऐसी जो पवित्र आज्ञाएं हैं ना उनको आज्ञा देने का अधिकार है। भगवान ने पांचों पांडवों को उसमें खास करके युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर मैं हस्तिनापुर गया हूं और वहां कुंती ने बहुत जोर देके कहा है कि नहीं, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण मां ने कह दिया, अब करेंगे। ऐसे ही स्त्री के लिए पति इतनी आज्ञा की पालना होनी चाहिए, पति की आज्ञा का। पति ने कह दिया, उसकी नियत देखो। इसलिए सेठ जी ने लिखा है कि पति की आज्ञा न हो तो एकादशी व्रत मत करो। अर्थात एकादशी व्रत, पति के सामने अपना मनमाना व्यवहार करोगे तो आज एकादशी के नाम से करे हो तो कल में और भी अपनी मनमानी करोगे। यहां से अच्छाई के नाम से जो बुराई आती है वो बुराई निकलती नहीं है। इसलिए सेठ जी ने ये बात लिखी है, उनकी भावना समझनी चाहिए। अस्तु, और भी कोई इस विषय में शंका हो तो सेठ जी ने बहुत बातें स्पष्ट की है। सज्जनों, माताओं, बहनों, ये बातें सुनने को नहीं मिलती। उच्छिष्ट मत खाओ, किसी साधु का चरणामृत मत ले। भयंकर समय आ रहा है, ज्यादा पाखंड के चक्कर में मत पड़ो, ऐसी ऐसी बातें कहने वाले ऐसे ऐसे बिरले महापुरुष थे। और नहीं, देख लो क्या हो रहा है। अस्तु, मनुष्य केवल इस मानव शरीर में ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये नया लेख है। यदि मनुष्य शरीर में अपने जीवन को उच्च बना ले तो अच्छा है, नहीं तो अनंत वर्षों तक नरकों में वास करना होगा। सावधान हो जाना चाहिए। अभी आपको नरकों के घोर अंधकार का पता नहीं है, आपके सामने कोई कष्ट दिख नहीं रहा है, अंधे होकर आप लोग पाप करते हो, परंतु शास्त्र के विपरीत चलने वाले की क्या दशा होती है वो शास्त्र देख लो। नाहक हम लोग पाप करते हैं, अनीति करते हैं और सुखी होकर के जीना भी चाहते हैं, करेंगे उल्टा और चाहेंगे सुल्टा। ये न्याय नहीं है। किसी को हम दुख देते हैं, कितनी बुरी वासना है। होना तो ये चाहिए कि जो हमको दुख देता है, यदि उस पर दुख आ जाए तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान इसका दुख कैसे दूर हो। उल्टा वो दुखी होता है तो सुखी होते हैं। वेद है, ये ईश्वर का कानून है, ये कानून की पुस्तक है। जो भी आपको ईश्वर का कानून समझना हो, वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो। जो न्याय पर चलता है वो सुखी होता है। वेद न्याय युक्त है, इसमें सारे ब्रह्मांड का हित है। ईश्वर के कानून के अनुसार चलना होगा। अरे एक मकान में घुसते हो तो वहां का जो कानून है, जहां से रास्ता है वहीं से जाओगे, दीवार तोड़कर थोड़ी जाओगे। ईश्वर नित्य है, कानून नित्य है। समय पर लिपि और भाषा में बदलाव हो सकता है, लेकिन उच्चारण भी बदल सकता है। कानून अनादि है। जब से सृष्टि है तभी से एक जैसा कानून बना आया। पाप करोगे दुख भोगना पड़ेगा, अच्छा काम करोगे सुख मिलेगा। जब से सृष्टि पैदा हुई इस कानून में कोई फर्क थोड़ा ही पड़ा है। इस कानून के अनुसार जो चलता है वो सुखी होता है। निष्काम भाव से कानून के अनुसार चलता है वो मोक्ष पाता है, उसमें शांति का कभी नाश नहीं होता।